जय राधव कुंज बिहारे
यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा वामन द्वादशी महामहोत्सव के दिन एवं श्रील जीव गोस्वामी के प्राकट्य दिवस के दिन 14 सितंबर 2016 को इस्कॉन मीरा रोड मुंबई में दिया गया।
गोपी जाना बाला भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
एक है वामन द्वादशी। आज के दिन भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। किस रूप में? वामन जी का पूजा। और आज के दिन आपके लाला के धारी मंदिर का उद्घाटन हुआ था। कितने साल पहले? और आज के दिन महान संत भी प्रकट हुए थे। मेरा नाम है जीवा गोस्वामी। आज बहुत ही सुंदर है। अद्वैतम उच्चतम अनादि अनंत रूपम। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान अनंत रूपों में प्रकट करते हैं। भगवान की अनेक लीलाएं हैं जिनको आप श्रीमद् भागवत में प्राप्त करते हैं। भगवान वामदेव कौन थे? भगवान के अवतार, जैसे कि आज के श्लोक में कहा गया है, परम भगवान प्रकट हुए चार हाथों के साथ और उनके जो शरीर है सजा हुआ था गहनों के साथ और रेशम के वस्त्रों के साथ और उनके नेत्र जो थे कमल के फूल जैसे खूबसूरत है। कुछ दिन पहले आप भक्तों ने जन्माष्टमी उत्सव मनाया था और आपने भगवान के विषय में पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब भगवान प्रकट हुए थे जेल खाने में, उनके माता पिता कहाँ थे? कैदी थे। भगवान प्रकट हुए थे अपने दिव्य रूप में चार हाथों के साथ, पूरा शरीर सजा हुआ था हीरों के साथ गहनों के साथ। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। हाँ भगवान अब प्रकट हो, भगवान प्रकट हो चुके हैं। माता पिता चिंता में थे और वासुदेव ने मन ही मन में जैसे गाएं सजे गाएं ब्राह्मण को दान में दे दिया। तो उसी प्रकार आप यहां देख रहे हो भगवान जब वामन देव जी के रूप में प्रकट हुए, प्रकट हुए किस रूप में? अपने दिव्य रूप में। आप देखोगे कि माता पिता के चेहरे पर सहानंद भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। प्रधानमंत्री कहेगा कैसे पकड़ हो सकते हैं घेरों के साथ सजे हुए? भगवान के लिए कोई का नहीं ऐसा मन। यहाँ कहा जा रहा है उनका पूरा शरीर सजा हुआ था और प्रकट लेकर के स्वरूप में प्राणघातक देखा। तो वामन देवी कथा भगवान के पांचवें स्थान में प्राप्त करते हैं। तो आप देखते हो बाली महाराज कौन था, वामन देव वामन देव भगवान को प्रकट हुए, अदिति माता के रूप में स्वीकार किया और पिता के रूप में कौन थे कश्यप मुनि। भगवान जब प्रकट होते हैं अपने ही भक्तों को माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। आप हमारे पास ये छूट नहीं है हम चुने कौन होंगे हमारे पिता को और माता, पर भगवान के पास ये छूट है। जैसे भगवान प्रकट हुए थे मथुरा में तो वासुदेव देवकी को माता पिता के रूप में स्वीकार किया था। वासुदेव देवकी ने 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए इतनी गहरी तपस्या लगाई थी। लगातार एक ही चिंतन था हमें भगवान प्राप्त हो पीने के रूप में और खाने के लिए केवल जो पत्ते पेड़ों से गिरते थे वही खा रहे थे और कुछ नहीं। और निरंतर यही भाव भगवान प्राप्त हो प्राप्त हो तो क्योंकि उन्होंने तपस्या का पालन किया उन्हें भगवान प्राप्त हुए सकते थे। तपस्या परम ज्योतिर भागवतम अधोक्षजम, परम भगवान अधोक्षजा है उन्हें समझना आसान नहीं है। तपस्या के माध्यम से आप समझ सकते हो। उसी प्रकार वामदेव भगवान भी जब प्रकट हुए उनके माता पिता कौन थे अदिति और कश्यप मुनि। कश्यप मुनि ने अदिति पत्नी को कहा था कि इसको कारण तपस्या करे प्रयोग व्रत कहा था। बड़ा गहरा व्रत है जिसके जिसमें दूध के सहारे जीना पड़ता है केवल दूध। और क्योंकि अदिति ने कश्यप मुनि के कहने पर कश्यप मुनि दीदी के पति भी थे और गुरु भी थे। कश्यप मुनि ने दीदी को कहा था कैसे तपस्या का पालन करने के लिए और फिर भगवान उनकी तपस्या से बड़े प्रसन्न थे और भगवान ने प्रकट हुए दिव्य रूप में। दिव्य रूप में जब प्रकट हुए भगवान ने अदिति का नया प्रकट हुआ गर्भ से। तो इस रूप में आप देख रहे हो परम भगवान प्रसन्न थे अदिति की तपस्या से जिसके ये परिणाम था भगवान प्रकट हुए इस रूप में वामदेव के रूप में। भगवान आए थे प्राणी प्राण को उद्धार करने के लिए। भगवान ने भगवान पहले तो प्रकट हुए इस दिव्य रूप में राम ने भगवान सुना। फिर भगवान ने साधारण ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप ग्रहण कर लिया। उस समय बाली महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। बाली महाराज ने इंद्र की कुर्सी को प्राप्त कर लिया था इंद्र के राज्य को। बाली महाराज के गुरु के शिव चलाया। दो प्रकार के गुरु होते हैं एक है, जन्म पर आधारित एक है, गुरु पर आधारित शुक्र शब्द का अर्थ है धीर्य। शुक्र चाया किसी गुरु भगवान ने भगवान देव गए बाल प्राण के अस्पताल में यज्ञ हो रहा था। बाली महाराज ने उनका बड़ा स्वागत किया। बाली महाराज के दादा का नाम क्या था? बाली महाराज वामन देव उनकी यज्ञ में पहुंचे। बाली महाराज ने उनका बड़ा आदर के साथ स्वागत किया। बाली महाराज को पता नहीं था ये सब है भगवान है, उन्होंने केवल ब्राह्मण बालक देखा। उनके सूरती से बड़े प्रभावित हुए थे और जब उनके यज्ञशाला में पहुंचे उन्होंने पूछा बाली महाराज ने, मैं तुम्हारे क्या सेवा कर सकता हूं? वामन देव ने कहा, अगर आप चाहते हो मेरी सेवा करने के लिए मुझे उतना स्थान दे दो जहां मैं कितने कदम 3 कदम रख सकू। बाली महाराज आश्चर्य हो गए थे ये सुनकर। बाली महाराज ने कहा, तुम धनी व्यक्ति के पास जाकर इतनी छोटी भीख मांगते हो, मैं तुम्हें पूरा ब्रह्मांड दे सकता हूं, अनेक लोग दे सकता हूं, और तुम मेरे से केवल इतना ही मांगना चाहते हो स्थान जहां रह सकू। तुम ज्यादा बुद्धिमान मुझे नहीं नजर आते। वामन देव ने कहा, जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता उसे अगर आप सारे विश्व का धन दोगे तो भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को वश में कर लिया वो व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट है। बाई महाराज कह रहे थे, भांगों में से हो, और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो दान मांग सकता है। ब्राह्मण सन्यासी को दान मांगने का अधिकार है। तो ब्राह्मण जो है उतना ही दान मांग सकता है जितना की आवश्यक हो, उससे अधिक नहीं। आप रामायण में पढ़ते हो कि भगवान राम और सीता ने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को बांटी थी। सीता ने केवल एक नकली रखा अपने लिए, सारे गहने ब्राह्मणों को बांट दिया। ब्राह्मण ने सबसे कहा कर दिया, जिसके पश्चात ब्राह्मण ने कहा, आपने हमारा हृदय जीता हुआ है, आपके चरण हमारे हृदय में बैठे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, और सारे गहने लौटा दिए। ब्राह्मण सी तो आज उम्मीद कर सकते हो ब्राह्मण से, हम गहने ब्राह्मण दोगे, ब्राह्मण कहेंगे हमारे संतोष है वापस। भगवान राम ने ब्राह्मण से पूछा, मांगो कितनी जमीन चाहिए मांगो। ब्राह्मण ने मांगा, क्या जितना आवश्यक है उतना ही, इसे अधिक नहीं। तो इसी भाव को वामदेव जी की लीला में भी प्रकट किया जा रहा है। तो बाली महाराज ने कहा वामदेव से, मांगो मैं से चीती और मांगो, तो मुझे जा रहा है बुद्धिमान नहीं देखते, दिखते इतने मैं पूरे पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूँ, इतना चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। होता ही ध्यान रखना देना चाहते हो, तीन कदम रखने के लिए कुछ नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े गहराई के साथ हम समझाते हैं कि हालांकि भाई महाराज ने कहा और मानो, मामले ने नहीं माना, मतलब केवल स्वयं भगवान थे। भगवान जब प्रकट होते हैं अपनी अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। अद्भुत लीला का मतलब है इंडिविजिबल लीला। कृष्ण भगवान जब प्रकट हुए उन्होंने भी अपनी अद्भुत लीला प्रकट की, जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन दिया, महान पर्वत को उठाया, छोटी आयु में ही तो माता की गोद में ही थे, राक्षसों का वध किया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु जी जब प्रकट हुए थे 500 साल पूर्व, उन्होंने भी अद्भुत लीला प्रकट की। उन्होंने भी अपने दिव्य विराटों का दर्शन किया। तो भगवान जब प्रकट होते हैं अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। तो वामनदेव जी के रूप में भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने भी अद्भुत लीला अपनी प्रकट की। तो जो ब्राह्मण है उन्हें उतना ही ग्रहण करना चाहिए, उतना ही दान लेना चाहिए, उतना ही दान मांगना चाहिए जितना ही आवश्यक हो, उसके अधिक नहीं। तो वामदेव ने कहा नहीं मुझे और नहीं चाहिए, ये बस है। शुक्राचार्य, शुक्र का अर्थ है जैसे हम कह रहे थे हमारे शास्त्र के अनुसार दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक है गुणों के आधार पर, एक है ज्ञान के आधार पर। भारत में कई संस्थाएं हैं जिनकी गद्दी बाप से बेटे को जाती है ना, बाप गुरु था तो बेटा भी गुरु बन जाता है, बाप गद्दी पर है बेटा भी गद्दी पर बैठता है। तो हमारे गौड़िया वैष्णव में हम पैदाइशी गुरु नहीं मानते, वो मानते हैं गुणों के आधार पर, जैसे गीता में भगवान कहते हैं छत्र बनवाया। शुक्राचार्य ने पहले बाली महाराज का सहयोग दिया था, उनका सहयोग दिया था जिसके द्वारा बाली महाराज ने इंद्र देवता से उनको विजय प्राप्त किया था। शुक्राचार्य समझ गए थे ये जो ब्राह्मण भिखारी है गुरु का, ये साधारण ब्राह्मण ब्रह्मचारी में ब्राह्मण नहीं है, कौन है जो भगवान है। भगवान प्रकट हुए हैं मेरे प्रिय शिष्य की सारी संपत्ति को हड़पने के लिए, और मेरा धनी शिष्य के लिए हो जाएगा तो मेरी रोटी कहां से आएगी। शुक्राचार्य पहचान गए ये तो ब्राह्मण भगवान की कला है, भगवान का नाटक है। उन्होंने अपने शिष्य भाई महाराज से कहा भाई महाराज तुम जानते नहीं ये कौन है, ये भगवान आए हैं इस ब्राह्मण के रूप में तुम्हारी सारी संपत्ति को हड़पने के लिए, ये संपत्ति पर तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देंगे और तुम भिखारी बन जाओगे। भिखारी बन जाओगे, मैं भी भिखारी बन जाऊ। उनके आमदन का साधन था भाई महाराज की कृपा। वो कह रहे थे तुमने जो वचन दिया है उसका पालन मत करो, वचन जो है उसका पालन मत करो। तुम कह सकते हो, तुम खौल कर रहे थे तो वचन पहले कहने से पहले से पहले मैं ओम शब्द का उपयोग नहीं किया। और कहा गया है कोई कठिनाई में हो कुछ कह सकते हो उसका पालन नहीं करे। उन्होंने कई उदाहरण दिए इस प्रकार से ये साबित करने के लिए कि वचन का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। बाली महाराज संकट में आ गए थे, एक तरफ से गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। यहां वो देख रहे थे कि गुरु ने रोक रहा है परम भगवान के चरण में सब कुछ समर्पण करने से, और एक तरफ से उन्होंने महामंदिर को वचन दे दिया था। क्या था वचन? क्या था? मैं स्थान होना तीन कदम रखूंगी। भाई ने बड़े ध्यान से सोचा, एक तरह से मेरा वचन ब्राह्मण को दिया हुआ है, मैंने ब्राह्मण को वचन दो पालन नहीं करो परिणाम होता है कि आप कहां जाते हो। तो इसी तरह से शुक्राचार्य का आदेश पालन मत करो जो तुमने कहा है, जिसके द्वारा तुम्हारी सारी संपत्ति। सोचने के पश्चात बाली महाराज ने यह निर्णय किया कि मुझे अपने वचन का पालन करना है। मैंने ब्राह्मण को वचन दिया है, ब्राह्मण को वचन देकर पालन नहीं करना भयंकर परिणाम माना जाता है। और बाली महाराज ने कहा शुक्राचार्य मेरे गुरु कह रहे हैं कि मेरी सारी संपत्ति ये ब्राह्मण हड़प लेगा, तो हड़प ले दो सारी संपत्ति, मृत्यु के समय तो जुदा हो जाएंगे हमारे से, हम संपत्ति के पीछे कितना प्रयास करते हैं चापलूसी करके, सबके मन में एक ही भाव है धन धन बड़ा फैला। इस श्लोक में इस कथा में वामदेव जी ने कहा, बाली महाराज ने कहा और मानो मैं इसे बड़े व्यक्ति धनी व्यक्ति के पास पहुंचकर इतना छोटा धन नहीं मांगते। और फिर वामदेव ने क्या कहा, वामदेव ने कहा जिस व्यक्ति ने इंद्रियों पर वश में नहीं किया सारे पृथ्वी का धन दोगे तो भी वो क्या बेचैन रहेगा। आप देख सकते हो भारत के जो धनी व्यक्ति है रोज नया नया कारखाना बनाना ला रहे हैं, नया बिजनेस है। क्यों? उन बेचारों को लगता है भारत कम धन और मेहनत कर लीजिए और मेहनत कर लीजिए और मेहनत कर लीजिए। सारे विश्व में आप देख रहे हो आज का जो धनी व्यक्तियों की संख्या है जिनके पास धन है वो ज्यादा धनी बनते जा रहे हैं, जिनके पास धन नहीं है ज्यादा गरीब बनते जा रहे हैं। जिनके पास धन है यही सोचते हमारे पास धन कम धन है और धन चाहिए और चाहिए और चाहिए। वामदेव ने कहा आप मुझे आकर्षित करना चाहते हो ये प्रेरणा देकर कि मैं और मांगूं, तो अगर मैंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया हो तो सारे विश्व का धन दोगे तो भी मैं बेचैन रहूंगा। जिसने इंद्रियों को वश में किया है तो ऐसे ही मैं संतोष आएगा। प्रभुपाद जी सनातन और रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण देते थे। रूप और सनातन एक समय विश्व के सबसे धनी राज्य का शासन कर रहे थे। रूप गोस्वामी ने अपनी सरकारी नौकरी त्यागी तो उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। तो जो वृंदावन में आए तो भिखारी बनकर मधुकरी करके जी रहे थे और वो हर स्थिति में संतुष्ट है। रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय के सबसे धनी पिता के इकलौते पुत्र थे। जहां वो चलते थे बारह सिपाही उनके साथ जाते थे। बारह उन्हें उनके पिता सबसे बड़े धनी जमींदार माने जा रहे थे। तो जब वो वृंदावन में आए तो मधु करके जीते थे, वो संतुष्ट थे क्योंकि उनके पास हरे नाम था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा हम इतने धनी थे और महल में रहते थे और एक पेड़ के नीचे रह रहे, हरिनाम था संतोष थे। तो प्रभुपाद जी कहते थे एक गांधी जी जब स्वतंत्रता का आंदोलन कर रहे थे एक बहुत धनी वकील था जो गांधी जी को बकायदा धन देता था आंदोलन को आगे बढ़ाने के। तो एक दिन गांधी ने कहा मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तो हिचकते हुए वो साथ जुड़ गया। तो थोड़े दिन बाद उसका हाल जाए क्योंकि धन देना था तो जीवन देना पड़ा। जीवन केवल भक्ति का भाव नहीं था, वो तो निराश था और बेचैनी में हाल जाए हो गया। तो प्रभु जी कहते हैं जो गोस्वामी थे उनके पास हर प्रकार की सुविधा थी, पर जब वो मधुकरी करके वृंदावन में जाए तो संतोष थे। क्यों? क्योंकि उनका हरिनाम था। तो जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों को वश में किया हो वो व्यक्ति चाहे आदर हो अपमान हो हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा। जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त किया हो उसे आप सारे पृथ्वी का धन दे दोगे उसे क्या लगेगा? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो दिखा रही मुझे और प्राप्त है। तो वामन जी की कथा में बड़ा गहरा उपदेश है। तो जब शुक्राचार्य ने कहा तुम बोल दो इस भिखारी ब्राह्मण ब्रह्मचारी से कि तुम खौल कर रहे थे, तो मामा ने सुप्रीम बाली महाराज ने ध्यान से सोचा। फिर बाली महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बाली महाराज ने कहा ये पृथ्वी पहाड़ों का बोझा उठा सकती है, ये पृथ्वी सागर को उठा सकती है, ये पृथ्वी सारा बोझा उठा सकती है, झूठे व्यक्ति का बोझा नहीं उठा सकती। मैं झूठ नहीं बोल रहा बनाएगा। पहाड़ों का बोझा उठा सकती है, सागर का बोझा उठा सकती है, झूठे झूठ बोलने का बोझा झूठे का बोझा नहीं उठा सकती। दूसरे शब्दों में वाली महाराज ने एक तो ये साबित किया कि धार्मिक व्यक्ति होना है तो सत्य का उच्चारण हमें करना चाहिए। ये नहीं कि आप धार्मिक हो और झूठ बोलते जाओ। भगवद गीता में जीव की तपस्या का वर्णन है। जीव की तपस्या के वर्णन में एक तपस्या लिखी है सत्य का उच्चारण करो। तो बाली महाराज ने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। उसी प्रकार जब हम ग्रंथों का अध्ययन आरंभ करते हैं तो मैं ग्रंथों के संदेश भी सत्य रूप से उसका प्रचार करें। ब्रह्मांड में ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ब्राह्मण को वचन दे दिया है, तीन कदम रखने का स्थान दूंगा और अवश्य की स्थान दूंगा। तो हालांकि शुक्राचार्य ने बहुत उपदेश दिया, इससे हमें क्या शिक्षा मिली है? स्मार्ट ब्राह्मण है वो केवल अपने स्वार्थ का सोचते हैं, जिनमें भक्ति भाव है वो हर चीज भगवान के चरणों में समर्पण करने को तैयार है। जैसे बाली महाराज ने कहा मृत्यु के समय सारी संपत्ति वहां से जो तो हो ही जाएगी, चाहे आप अंबानी हो टाटा हो बिरला हो, मृत्यु के समय तो सब संपत्ति हमारे जुदा हो ही जाएगी। तो बाली महाराज ने कहा मृत्यु के समय इस संपत्ति में से जुदा हो ही जाएगी, तो अगर भगवान चापलूसी करके मेरी संपत्ति लेना चाहते हैं तो लेने दो, क्या क्या मतलब बोल रहे हैं? आखिर संपत्ति भगवान को जा रही है, तो भगवान हर चीज के स्वामी है, भगवान हर चीज के स्वामी है, भगवान हमारे देह के स्वामी है। कई बार जब हम सेवा में जुड़ते हैं हमें लगता है ओ जीवन भगवान की सेवा में दे रहे हैं, जी आपके शरीर का स्वामी कौन है? परम भगवान। हर कार्य के स्वामी कौन है? परम भगवान। भोक्ता नाम में सर्वलोक वामन देव ने तैयारी की अपने वचन का पालन करने के लिए, वाली महा ने तैयारी की अपने वचन का पालन करने के लिए। वाली महा ने वामनदेव का वामनदेव ने अपना पहला कदम रखा। अब आप सोचोगे कदम रखने का अर्थ है आपका गीते का साइज आठ या नौ या दस जो भी हो, तो भगवान जब एक कदम रखते हैं वो एक कदम से पूरे ब्रह्मांड को ढक देते हैं। ये तो पहले कदम उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को ढक दिया, दूसरा कदम लिया और दूसरा कदम आ गया, दूसरा कदम गया सत्य लोक से भी आगे। लोग कहते हैं कई लोग अपने नामों के सामने भगवान शब्द जोड़ते हैं, कई लोग दावा करते हैं भगवान के अवतार है, तो उनको बोलो आप महादेव की लीला करना कब करो, और पहला कदम रखो पूजी और देखते हैं आप कितना लंबा फैला सकते हो, दूसरा कदम देखते हैं कहां तक फैला सकते हो। उनका दूसरा कदम सत्य लोक से भी आगे तक चले गया। फिर भगवान ने कहा आप तीसरा कदम कहां रखूंगा? शुक्राचार्य ने कह दिया था पहले ही बाली महाराज है तुम नहीं पालन कर सकोगे, तुम उन्हें स्थान नहीं दे सकोगे, तीन कदम रख लेंगे तुम्हें नरक में लग जाना पड़ेगा। बाली महाराज अगर मुझे वचन पालन करके नरक में भी जाना पड़े नरक में जाने को तैयार हूं। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में कहा गया है नारायण परा सर्वे कृतेशन अभिव्यति स्वर्ग प्रवर दंड केशव अभी तुझे अर्थ दर्शन। भगवान के भक्त हैं, अगर उन्हें नरक में भी जाना पड़े भगवान की सेवा के लिए वो तैयार है। भगवान के भक्त ये नहीं कहते हाँ की सेवा करेंगे पर केवल अगर हमें स्वर्ग में जाने का मौका मिले। भगवतम के छठे स्कंद में भगवान कहते हैं नारायण परा सर्वे नान प्रदर्शन देव्यति स्वर्ग प्रवर्ग तर्केशव। मेरे भक्त अरे नरक देवी वाले जाना पड़े वो जाने को तैयार है, उनके मन में एक ही भाव है सेवा का मौका। ठाकुर भक्ति ने और महान संत एक प्रार्थना में कहते हैं, मुझे बेचे का कीड़े का जन्म दो, पर कहा मंदिर में कहते हैं बेचे कीड़े का जन्म दो तो किसी वैष्णव के घर में, क्योंकि वहां मुझे हरि नाम तो सुनने का मौका मिलेगा। ये होना चाहिए भक्ति भाव। तो बाली महाराज ने, बाली महाराज राजा थे एक देश का नहीं पूरे ब्रह्मांड का, ये राजा थे। तो वामनदेव ने कहा, बाली महाराज बोलो कि तीसरा कदम कहाँ रखूं मैं, पहले दो कदम में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को ढक दिया था, तीसरा कदम कहाँ रखूं। बाली महाराज ने क्या कहा, तीसरा कदम रखो मेरे। बाली महाराज ने सोचा पहले दो कदम में तो भगवान ने मेरी संपत्ति दी है, जो ब्राह्मण था उनकी संपत्ति थी, पहले दो कदम में भगवान ने मेरी संपत्ति दी है, आप भगवान को मुझे भी लेने दो। तीसरा कदम जैसे बड़ा, तो भगवान ने भी कथा में अनेक प्रकार के संदेश दिए। बाली महाराज बड़े दृढ़ थे, डिटरमिंड थे अपने वचन का पालन करने के लिए। हालांकि उन्हें बार बार कहा गया कि तुम नरक में जाओगे, बाली महाराज ने कहा नहीं, मैंने अपने वचन का पालन नहीं करना है। जब देवता ने यह देखा कि बाली महाराज बड़े दृढ़ होकर अपने वचनों का पालन करना चाहते हैं, वो बड़े प्रसन्न हो। उसी प्रकार जब हम सेवा में जुड़ते हैं, हमें भी दृढ़ होकर सेवा में जुड़ना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी कठिनाई हुई हम विचलित हो जाए। बाली महाराज को कहा गया तुम नरक में जाओगे, तुम जानते नहीं किस प्रकार की सजा भुगतनी पड़ेगी जब भी उनको। तो बाली महाराज कुछ सजा भुगतनी पड़ी, क्योंकि उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें प्रेरणा उनको श्राप दिया था, पर उसके पश्चात भगवान ने बाली महाराज को सुतला लोक में रहने की सुविधा दी। तो बाली महाराज की कथा में ये संदेश भी मिलता है, भगवान जब देखते हैं क्योंकि भक्त का आकर्षण है संपत्ति के प्रति, साथ में भक्ति की भावना भी है, तो भगवान क्या करते हैं, क्या करते हैं, धन को कभी ले लेते हैं, भक्त को उन पर बिल्कुल निर्भर कर गया। कई बार हम देखते हैं हम ऊपर का धन हो संपत्ति हो, हम जब घमंडी हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारी संपत्ति है, हमारा ही है। तो बाली महाराज को इंद्र का राज्य प्राप्त हो गया था, बाली महाराज सोचते थे अब मैं इतना बड़ा राज्य मैंने प्राप्त कर लिया है। भगवान बाली महाराज को शिक्षा देना चाहते थे, भगवान प्रकट हुए वामदेव के रूप में बाली महाराज को शिक्षा देने के लिए। पहले उन्होंने उनकी संपत्ति को नहीं लिया, फिर भगवान ने रहने के लिए ऐसा लोक दिया जहां तो बड़े आराम के साथ रह सके, जहां किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। तो समय का भाव है, तो आज के दिन विजय द्वादशी के दिन भगवान प्रकट हुए थे वामदेव जी के रूप में, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी अद्भुत लीला प्रकट की। तो ये शुभ अवसर पर हम आपके राधा के धारे मंदिर का पहला ही सालगिरह भी मना रहे हैं। तुम्हें भाव होना चाहिए जिस प्रकार बाली महाराज हर चीज त्यागी, जिस प्रकार बाली महाराज ने सोचा नित्य के समय सब कुछ जुदा हो ही जाएगा, तो पर भगवान हर चीज के स्वामी है। तो अगर भगवान चापलूसी करके एक ब्रह्मचारी के रूप में आकर नहीं संपत्ति देना चाहते, लेने दो तो। संपत्ति का मालिक कौन है? भगवान तो मन बुद्धि इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा उपयोग करें तो हर स्थिति में संतुष्ट रहेंगे। जैसे ठाकुर भक्त कहते हैं, मन से देह को कुछ मोड़ा हे मेरे भगवान, मेरा धन पत्नी बच्चे संपत्ति सब आपकी है, आप नहीं देखो। तो मंदिर की कथा में अनेक प्रसिद्ध प्रकार के संदेश मिल रहे हैं, इनका हमें ध्यान देना चाहिए, उनको चिंतन करनी चाहिए। मंदिर महाराज की हाँ, एक महान संत जीवा गोस्वामी का आविर्भाव तिथि है ना, तो जीवा गोस्वामी जीवा गोस्वामी गोस्वामी के भतीजे थे और जीवा गोस्वामी माना जाता है छह गोस्वामियों में शास्त्रीय ज्ञान में संस्कृत भाषा में सबसे प्रसिद्ध है। जीवा गोस्वामी ने संत शिक्षा ग्रहण की, वाराणसी में नवोदय में आए थे, नवोदय में आकर नित्यानंद भगवान के साथ अनेक कीर्ति सामग्री यात्रा की और फिर चैतन्य महाप्रभु के कहने पर वृंदावन गए थे। तो जीवा गोस्वामी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, संदर्भ की रचना की और जीवा गोस्वामी छह गोस्वामी में सबसे छोटे थे। जीवन गोस्वामी सनातन गोस्वामी से दीक्षा लेना चाहते थे। सनातन गोस्वामी ने कहा, मेरे से दीक्षा मत लो, मेरे भाई से लो, रूपा गोस्वामी। और रूपा गोस्वामी ने दीक्षा लेने से पहले जीवन गोस्वामी की परीक्षा ली, उनसे कुछ सेवा कराई। जैसे हमारी संस्था में भी दीक्षा लेने से पहले विद्यार्थी की परीक्षा ली जाती है, तो रूपा गोस्वामी छोटी छोटी सेवाएं करा रहे थे। जीवा गोस्वामी ने घर साफ करो, सड़क साफ करो, मसाज करो, विशाल बनाओ। तो जब रूपा गोस्वामी संतोष से उनकी आचरण से उन्होंने उनको दीक्षा दी। उन दिनों में एक बड़े प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे जिनका नाम था रूपनारायण सरस्वती। बड़ा गहरा संस्कृत का ज्ञान था और वो ये स्थापित करना चाहता था हर जगह कि मैं हूं सबसे बड़ा विद्वान। मुझे केशव कृष्ण कहता था महाप्रभुपरहंस सरस्वती आए एक बार ऊपर सनातन मंदिर में, मुझे कहा देखो ये मेरे ऊपर दिग्विजय कहा जाता था। दिग्विजय मतलब जिसने सबको हराया हो, तो सबको हरा कर विजय पत्र लेता था, मैंने इस व्यक्ति को हराया है, मैं तुम्हारे साथ संस्कृत में डिबेट करना चाहता हूँ। उनको सनातन ज्ञान था, भक्ति के लिए था, ये स्थापित करने के लिए नहीं, हम बड़े प्रसिद्ध पंडित हैं। उनको सनातन ने इनकार कर दिया। तो मुझे एक पत्र दे दो, मैंने तुम्हें संस्कृत के डिबेट में हरा दिया। उपासनाथ ने पत्र दे दिया कि उपनंद सरस्वती ने हमें संस्कृत के डिबेट में हराया, मतलब कि उनका ज्ञान इनसे ज्यादा गहरा है। तो उपनंद सरस्वती सबको दिखा रहा, देखो ये दिग्विजय पत्र, मैंने रूप और सनातन को भी हरा दिया है संस्कृत में। जीवन गोस्वामी को यह अच्छा नहीं लगा, जीवन गोस्वामी ने कहा कभी संभव नहीं है कि रूप सनातन को कोई भी हरा सके। तो 7 दिन के लिए यमुना नदी के तट पर उनका डिबेट हुआ, जिसमें उपनयन हार गया सब ब्राह्मणों के सामने, उपनयन को भागना पड़ा वृंदावन। तो जीवन गोस्वामी बड़े खुश हुए और बड़ी खुशी के साथ रूप और सनातन के पास आए। रूप और सनातन ने कहा तुम्हें तो ऐसे व्यक्ति से डिबेट करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये व्यक्ति में भक्ति भावना है, जिसके कारण लगभग 1 साल के लिए जीव गोस्वामी को मथुरा में एक पेड़ के बड़े छेद में रहना पड़ा सजा के रूप में। एक दिन सनातन ने रूपा से कहा जीव दया ये था चैतन्य महाप्रभु जी का संदेश, जीव दया मतलब महात्मा पर दया करो, तो ये मतलब भी था जीव गोस्वामी पर दया करो। तो फिर जीव गोस्वामी रघु गोस्वामी ने वापस कहा जीव गोस्वामी बड़े प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे, मुसलमान राजा अकबर भी उनके ज्ञान से बड़ा प्रभावित था। तो कहा जाता है कि अकबर भी वृंदावन में आए थे जीव गोस्वामी को मिलने के लिए, और जीव गोस्वामी की प्रेरणा से निराला गुजरा दामोदर मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें जीव गोस्वामी की मूर्ति की स्थापना हुई है। तो आज स्वामी का अरे बात कीजिए, हम जीव गोस्वामी के शरणागत हो सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी बुद्धि दें कि हम दृढ़ होकर उनकी सेवा में जुड़े। और बाबा ने भी कथा में हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, जिस अगर बाली महाराज के मन में यही भाव था भगवान की सेवा, हमारे मन में भी दृढ़ होकर यही भाव रहे क्या मन की सेवा, वो निकुल कार्य हो स्वीकार करो, प्रतिकूल हो स्वीकार करो। हरे कृष्ण। मैं जब कोई पॉइंट संक्षेप में पढ़ना चाहता हूँ ना बोलने ना, तो नारा गिरधारी मंदिर का इतिहास आप सब इतिहास जानते हो, मुझे कहीं जानता वाला पसंद नहीं जानते। 1986 में राधा के धारी मूर्तियों की स्थापना हुई थी महिंदर में, गया था महिंदर में इनकी स्थापना हुई थी, लगभग 86 प्रभु उस समय मंदिर के भक्त थे और भले प्रभु की सहायता से ये जो मीरा रोड का जमीन है प्राप्त हुआ था 1995 में, छोटी जमीन से ये जमीन प्राप्त होने का 1995 में। और जनरल बलदेव सुभद्रा ये मूर्तियां चाहता है जून में थी, जून मंदा के ट्रेवलिंग पार्टी में थी। फिर वो मूर्तियों की स्थापना की नेहरू के मंदिर में। रामनवमी के समय उन दो मूर्तियों का स्थापना हुई थी एक छोटे मंदिर में। विचार बढ़ते गए, सूर्यदास प्रभु आए थे यहाँ थोड़े समय देखते हैं, प्रभु ने सहयोग दिया। नीलम मंडल ठीक रहने में जयंती भाई सूर्यदार और अरवाल जी के सहयोग से आश्रम खुला 2006 में, पीछे का आश्रम 2006 में यह आश्रम खुला था। नए मंदिर जिसका निर्माण हुआ पिछले साल, इसका कार्य शुरू हुआ था 2009 में और 6 साल लगे ये मंदिर को बनाना। 6 साल लगे मंदिर बनाने में। मंदिर का विचार था और कौन का है स्थापना की गई, लारा गिलाने की तो पहले हो गई थी। बहुत भक्तों ने सहयोग दिया मंदिर बनाने में। अब मैं से किन किन सहयोग दिया सब याद रखेंगे, खास करके नित्यानंद माधव और द्वारकानाथ से बहुत सहयोग दिया, जिसके द्वारा ये मंदिर बन पाया तेजी के साथ। और बच्चिया प्रिया अनुरंगी माता जी के लिए हरे खटे करने में सहयोग दिया, मंदिर के साथ भक्तों ने सहयोग दिया, खास करके कमलोचन आज गोविंदा प्रभु का खास परिश्रम था, उसके द्वारा सब लोग जुड़कर आगे बढ़े मंदिर को तैयार करने में। और ये जो फर्स्ट एनिवर्सरी उत्सव है उसमें भी कई भक्तों ने सहयोग दिया है, आप सब ने सहयोग दिया, खास करके श्रीमान कृष्ण प्रभु जिनेंद्र प्रभु कृष्ण मंदिर रायनी भद्रा रस बंदर परंपरा परंपरा वाणी भक्त ने इस उत्सव को सफल बनाने में सहयोग दिया। अभी नॉर्थ उत्तर उत्तर बॉम्बे में आपका राधा के धारे का मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर बन गया है। उत्तर बॉम्बे में सब कहते हैं राधा के धारे का दर्शन नहीं किया तो जीवन असफल है। आपको ऐसे ऐसे बोर्ड लगाने हैं राधा के धारे दर्शन प्रॉब्लम। ये संक्षेप में इतिहास था, आप तुम्हें से कैसे भक्तों बन गए, मेरा नाम ही बोला कोई मारा नहीं। आप सब ने मेहनत की है, सबकी मेहनत से मंदिर बना है और चल रहा है। ये सबके नाम आप जानते हो, बोलना कई बार कठिन होता है, विश्वाचार्य तो कहते हैं मेरा नाम भी मान लो, नाम लोगे तो सब बोल कर थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna.
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.